О, ణమోలు శ్రోత్రికాళవర్తి వచ్చాయణం ఓంకార బిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగిన కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమః. మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమో గణి మంగళం కుందకుందార్యో జైన ధర్మోస్తు మంగళం. సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వకళ్యాణకారకం ప్రధానం సర్వధర్మాణం జైనం హేతు శాశ్వతం. నమసమయారాయ స్వానుభూత్యా చకాశతే చిత్స్వభావాయ భావాయ సర్వభావాంతరచిరే ఏగోమి శాశ్వతోపాజ్ఞాందర్శన లక్షణం శేషామి బాయిరా భావా సవేషయోగ లక్షణ. ఓం శ్రీ నమశివే నమశివే నమశివే. మౌనా కి శిబిర్ కా పహలా దిన్ చల్ రహా హై శురూ హువా ఆజ్ సే. ఉస్మే అప్నే కో యహాన్ సమయసార్ పరమాగమ్ కీ 14వీ గాథా కే ఉపర్ స్వాధ్యాయ కర్నా హై. కుంకుద ఆచార్య దేవ్ నే జో పంచ పరమాగమ్ లిఖే హై ఉస్మే जो अज्ञानी जीवनादि का है, जो अनादि से अप्रतिबुद्ध है, वो जीव क्षण मात्र में तत्काल प्रतिबुद्ध कैसे बन जाए, उसके लिए ये समयसार परमागम की रचना की. प्रवचन सार ज्ञान प्रधान रचना, समय ज्ञान प्रधान ग्रंथ लिखा, और नियम सार ग्रंथ तो वास्तव में कुंकुद आचार्य देव ने अपने लिए लिखा, और अपने लिए लिखा उसमें उसको संयम रूप चारित्र तो वर्त रहा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट तो हो गया था, आगे चल के मुनि दशा भी आ गई, और आचार्य पदवी से आगे जाके पूर्ण वितरागता कैसे प्रकट होवे, उसके लिए नियमसार ग्रंथ लिखा गया है. तो नियमसार ग्रंथ है वो दृष्टिपूर्वक चारित्र प्रदान ग्रंथ है. ऐसे ऐसे पंचास्ती का अष्टपाहुर पंच परमागम कुंदकुद आचार्य भगवान ने लिखे, और वो परमागम में मुख्य रूप से जो समयसार परमागम की रचना हुई, जो अनादि का प्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध कैसे होवे, ऐसा समयसार की कोई भी गाथा खोलो तो वो सब गाथा में अपना नाम लिखा हुआ है. ऐसा भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञायक त्रिकाल भाव भूतार्थ स्वभाव अपरिणामी तत्व नित्य स्वयं देव निर्लेप तत्व निर्वोज तत्व एक रूप तत्व अखंड तत्व वेद तत्व निष्क्रिय तत्व ध्रुव तत्व, उसको बताने वाला ये समयसार परमागम है. तो ये जो अपना स्वभाव की महिमा ये समयसार परमागम दिखा रहा है कि तेरा स्वभाव तेरे पास है, तेरा स्वभाव तेरे पास है उसमें भी स्वभाव बहुत दूर है, तेरा स्वभाव तू ही है, ऐसा बताने वाला ये परम अध्यात्ममय परमागम है. उसमें जो प्रथम जीव अधिकार है उसकी 14वीं गाथा जो है कुनकुन आचार्य देव ने 12 गाथा तो पीठिका रूप से लिख दी। संक्षिप्त रुचि वाला जीव त्वरित में समझ जाए और अपना आत्मा की प्राप्ति कर ले, उसके लिए 12 गाथा लिखी गई। उसके बाद में 13वीं गाथा में नव तत्व के नाम अधिकरण 13वीं गाथा में किया आचार्य भगवान ने। और 13वीं गाथा में जो नव तत्व को भूतार जाने उसको सम्यक दर्शन हो जाता है ऐसा बताकर, बाद में 14वीं गाथा अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त वाली लिखी आचार्य भगवान ने। ये सम्यक दर्शन की गाथा है। सम्यक दर्शन पर्याय है, मगर वो पर्याय शुद्धात्मा के लक्ष्य से प्रकट होती है, शुद्धात्मा में अहम करके प्राप्त होती है। ऐसा सम्यक दर्शन की प्राप्ति अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को कैसे हो जाए, उसकी ये 14वीं गाथा है। और सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति उसी समय में होती है, इसलिए उसके आगे के क्रम में आचार्य भगवान ने 15वीं गाथा लिखी है, जो 15वीं गाथा को जीन शासन कहा जाता है। जीन शासन जो अपना आत्मा की दृष्टि करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है 14वीं गाथा में, उसी को ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, तो वो सम्यक ज्ञान को जीन शासन कहा गया। ऐसी 15वीं गाथा कुनकुन आचार्य देव ने सम्यक ज्ञान बताने के लिए लिखी, और 14वीं गाथा सम्यक दर्शन की कैसे प्राप्ति हो उस लिए लिखी है। देखो, आचार्य भगवान जो जो गाथाएं लिखते हैं, अमृतचंद्र आचार्य देव उसके ऊपर जो जो कलश चलाते हैं, उसमें सब में पूरा आगम और अध्यात्म का सुमेर करके लिखा जाता है। कोई भी आचार्य हो, उसकी जब माने कि उसकी विकल्पात्मक दशा में शास्त्र की रचना जब हो जाती है, तो अंदर में जो अपना स्वरूप है वो निर्विकल्प दशा में उस स्वरूप की जो उसने प्राप्ति की है, उस स्वरूप को पहचाना है, बार 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 सदुपयोग आता रहता है, और सदुपयोग छूटता है, विकल्प में आता है, तो भी शुद्ध परिणति निरंतर चलती रहती है। ऐसी कोई स्थिति वाला ज्ञानी जीव होता है, ऐसे जो सातवें छठे गुणस्थान में झूलने वाले अपने ये कुनकुन आचार्य और अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये समयसार परमागम उसकी टीका और उसके कलश बनाए, जो विकल्पात्मक दशा में आके ये सब रचना कर दी है, और उसकी विकल्पात्मक दशा की रचना अपनी निर्विकल्प दशा में निमित हो जाती है, ऐसी कोई रचना आचार्य भगवान द्वारा हो रही है। अभी ये आचार्य भगवान ने तो कुनकुन आचार्य देव ने 2000 साल पहले ये रचना कर दी, उसके 1000 साल के बाद में अमृतचंद्र आचार्य मिले, और वो अमृतचंद्र आचार्य देव ने समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिका की टीका भी कर दी, मगर उसके 1000 बाद साल तक भी उसको खोलने वाला कोई पुरुष ही नहीं था। ये 1000 साल का आंतरा है पूरा। 2000 साल पहले कुनकुन आचार्य हुए, शास्त्र लिख दिए उसने। कुनकुन आचार्य 11 साल 11 वर्ष में तो दीक्षा ग्रहण कर ली, 44 वर्ष की उम्र में उसको आचार्य पद की आरोहण विधि हो गई, और 95 साल 10 डेज और 15 दिन तक उसका आयुष्य था, उसकी समाधि हो गई। पंचानुसार 10 महीना और 15 दिन। तो ऐसे जो अपने आचार्य हो गए उसने ये सब रचना अपने लिए की है, मगर उसका स्पष्टीकरण करने वाला पुरुष कोई 2000 साल तक नहीं हुआ। जो जो साधक जीव भी हो गए वो अपनी अनुभूति करके, अपने में रह के अपनी अनुभूति करके वो आगे आगे निकल के चले गए, मगर जो इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए ऐसा स्पष्टीकरण अपने धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा ये 2000 साल के बाद जब समयसार ग्रंथ उसके हाथ में आया, समयसार परमागम जब उसके हाथ में आया दामनगर के दामोदर सेठ के पास से, तब वो ग्रंथ हाथ में लेते ही उसके माने की वचन खीर पड़े कि अशरीरी होने का यह शास्त्र है, शरीर से रहित होना हो तो इसमें ये निमित्त पना पड़ा है, तेरा अशरीरी परमात्मा को देखने का निमित्त पना ये समयसार परमागम बता रहा है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से ऐसा शब्द निकल पड़े हैं। और बाद में समयसार का जितना मंथन चिंतन उसका प्रयोग पूज्य गुरुदेव श्री ने जो चालू किया, दिन रात समयसार का चिंतन चलता था पूज्य गुरुदेव श्री का। 78 में समयसार हाथ में आया, 4 साल तक तो समयसार को छोड़ा ही नहीं। बाद में 1982 में उसके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक उसको मिला। देखो समयसार देने वाले भी दामोदर सेठ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक देने वाले भी दामोदर भाई राजकोट वाले, उससे वहां से मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला और वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक उसके हाथ में आया। तो माने कि खाना पीना तो सब एक तरफ, उसकी धुन चढ़ गई उसको, ऐसी धुन चढ़ी कि शास्त्र साथ में लेके ही फिरे, जब टाइम मिले पढ़ने लगे। ऐसी धुन लगती है ना तब अप्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध होता है। ये शास्त्र अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाने के लिए है। जब तक ऐसी धुन नहीं लगती जीव को तब तक उसका अज्ञान जाने की माने की शुरुआत ही नहीं होती। ऐसे ये शास्त्र में मर्म भरे है, ऐसे अपनी स्वभाव की धारा बताई है, विकल्प कैसे होता है और विकल्प कैसे छूटे और निर्विकल्पता कैसे प्रकट हो जाए, ऐसी भी विधि इस समयसार परमागम में बताई है। ऐसा एक परमोत्कृष्ट समयसार परमागम अपने को मिला है और वो परमागम का स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक कर दिया। 45 साल तक कभी भी आप देखो तो एक बार तो समयसार सभा में सोनगढ़ में चलता रहे, बार बार समयसार पूरा होवे तुरंत समयसार, पूरा होवे तुरंत समयसार। सोचो ज्ञानी पुरुष भी इसको छोड़ते नहीं समयसार को, हालांकि ये तो निमित है मगर ये परमोत्कृष्ट निमित है कि जिसमें अपना भगवान आत्मा की प्राप्ति का विधान इसमें लिखा गया है। ऐसी ये परमागम की बहुत महिमा है, माने कि ये अनुपम परमागम है। ये परमागम की कोई उपमा दूसरे परमागम से अपन कर ही नहीं सकते उसको, ऐसा अनुपम परमागम अपने को मिला है। अभी उसमें जो गाथा चौथी लिखी है उसके आगे एक 10 नंबर का कलश लिखा है आचार्य भगवान ने, उससे अपन आज शुरुआत करते हैं। ये सब जो भी कुछ अपने पास स्पष्टीकरण है वो पूरा गुरुदेव का स्पष्टीकरण है और जो भी कहा जाएगा वो सब गुरुदेव का है, कहने वाले का कुछ नहीं है, सब गुरुदेव का है।
तो इस अपेक्षा से अपने को इसको सुनना चाहिए कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं और गुरुदेव ने अपने को क्या इसमें समझाया है और अपने स्वरूप की प्राप्ति अपने को कैसे हो जाए, इसका जो विधान है वो यहाँ लिखा गया है। ये 10 नंबर का कलश आप निकालना भैया मूल ग्रंथ में से, कलश नंबर 10 है। आगे सुदनई का उदय होता है उसकी सूचना रूप श्लोक कहते हैं। श्लोक है, आत्म स्वभावं परभाव भिन्नं आहूनमाद्यन्त विमुक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालं प्रकाशयन सुदनयोऽप्युदेति। श्लोकार्थ है, इस श्लोक में ये कहना चाहता है, चाहते हैं आचार्य भगवान अमृतचंद्र आचार्य देव ने श्लोक लिखा है कि जो तेरा आत्म स्वभाव है वो पर भाव से भिन्न है। पर भाव से भिन्न कहने से पर द्रव्य और पर द्रव्य में होने वाले भाव और पर द्रव्य और पर द्रव्य में होने वाले भाव, उसके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, वो मेरा भाव, वो पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव, उसके निमित्त से मेरी पर्याय में होने वाला विभाव, उसको बोला जाता है पर भाव। ऐसे पर द्रव्य और पर भाव से जो सदाय पृथक रहता है ऐसा मेरा आत्म स्वभाव है। ऐसा आत्म स्वभाव को शुद्ध नहीं बता रहा है, माने कि जो आत्म स्वभाव को बताने वाला है उसका नाम शुद्ध नहीं कहा जाता है, ऐसा ये कलश में कहना चाहते हैं। इसमें अस्थि का प्रकरण भी बता रहे हैं, नास्ति का प्रकरण भी बता रहे हैं। अस्थि नास्ति अनेकांत की सत्ता को सिद्ध करके अपना स्वभाव कैसा है वो बताएंगे कि अपना स्वभाव में पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव का कुछ नहीं है, पर द्रव्य के और पर द्रव्य के भाव के निमित्त से होने वाला अपना विभाव अपनी पर्याय में चल रहा है वो सब पर द्रव्य में जाता है और उससे पृथक मेरा आत्म स्वभाव है, जो मेरा चैतन्य स्वभाव है वो परिपूर्ण है, वो नित्य है, उसमें कोई अधुरास नहीं है, वो संपूर्ण तत्व है, समृद्ध तत्व है, अनंत गुणों से सवर है। ऐसी मेरी जो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता है उसको यहाँ 10वें कलश में बता रहे हैं और ये 10वां कलश में ये सत्ता बता के फिर 14वीं गाथा में 5 भाव स्वरूप 5 बोल बता के अपना शुद्धात्मा की पहचान कराएंगे। ऐसा ये महत्वपूर्ण कलश आचार्य भगवान ने लिखा है। इसमें ये कहते हैं कि शुद्ध नहीं आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। शुद्ध नहीं उसको ही कहा जाता है कि जो अपने आत्म स्वभाव को माने कि दिखाता हो, आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ ही उदय होता है, माने कि उसमें कुछ भेद ही नहीं होता है कि कौन शुद्ध आत्मा और कौन शुद्ध नहीं। 11वीं गाथा में तो शुद्ध नहीं को ही शुद्ध आत्मा कह दिया है, 11वीं गाथा में शुद्ध नहीं को ही शुद्ध आत्मा कह दिया है, क्योंकि अपना जो शुद्ध आत्मा है वो शुद्ध आत्मा जो शुद्ध आत्मा को बताता है उसी को शुद्ध नहीं कहा जाता है। तो वहां कोई प्रकार का शुद्ध नहीं और शुद्ध आत्मा का भेद होता ही नहीं, इसलिए वहां शुद्ध नहीं को ही शुद्धात्मा कह दिया, शुद्धात्मा को ही शुद्ध नहीं कह दिया। ऐसा यहाँ कहते हैं कि शुद्ध नहीं आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। वह आत्म स्वभाव को कैसा बताता है, अभी वो कहते हैं, वो आत्म स्वभाव को कैसा शुद्ध नहीं बता रहा है, आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ ही उदित होता है। तो आत्म स्वभाव को कैसा बता रहा है कि आत्म स्वभाव है कैसा, आत्म स्वभाव अपने स्वभाव से तो अपरिणामी तत्व है, वो शुद्ध तत्व है, चैतन्य तत्व है, नायक तत्व है, भूतार्थ तत्व है, एक रूप तत्व है, मगर वो तत्व ऐसा है, ऐसी पहचान उसे कैसे हुए, ऐसी पहचान कैसे की जावे, तो के अपनी पर्याय में जो भाव भी विभाव रूप चल रहे हैं, वो विभाव का स्वरूप क्या है और अपने स्वभाव का स्वरूप क्या है, ऐसी अस्थि और ऐसी नास्ति, वो दो पहलू बता के अपनी अस्थि में कैसे रहना, वो यहां सिद्ध आचार्य भगवान कर रहे हैं कि वह आत्म स्वभाव को पर भाव भिन्नम, पर द्रव्य के भाव तथा पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, पर द्रव्य माने की कर्म की सत्ता को यहां पर द्रव्य बोलते हैं, और पर द्रव्य के भाव जो है वो कर्म की सत्ता में कर्म है, उसका उदय आता है, उसको पर द्रव्य का भाव बोला जाता है। पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव, कर्म की सत्ता और कर्म का उदय, वो पर द्रव्य में चला जाता है, और उसकी सत्ता जहां पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव है उसके निमित्त से, उससे नहीं मगर उसका निमित्त बना जरूर होता है, अपनी पर्याय जो प्रकट होती है, अपना जो द्रव्य स्वभाव है और अपना जो पर्याय स्वभाव है, एक अपना आत्मा में द्रव्य स्वभाव है, एक अपना आत्मा में उसी का ही पर्याय स्वभाव है, मगर वो पर्याय स्वभाव अपने स्वभाव को छोड़कर अभी पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव के सन्मुख होके उसका लक्ष्य करके उसको ज्ञेय बना के अभी अपने में विभाव प्रकट कर रही है, तो उसको बोला जाता है कि अपना भाव में अभी विभाव का परिणमन पर द्रव्य से, पर द्रव्य के निमित्त से और पर द्रव्य में होने वाले भाव के निमित्त से अपने में, अपनी पर्याय में विभाव भी प्रकट हो रहा है। वो यहां बता रहे हैं कि ऐसा होने पर भी अपना आत्म स्वभाव कैसा है, तो कि अपना आत्म स्वभाव पर द्रव्य के भाव और उसके निमित्त से होने वाले, अपनी पर्याय में होने वाले विभाव, वो सबसे रहित अपना आत्म स्वभाव है। तो अपनी पर्याय में विभाव को भी वो कर्म के साथ अभेद करके निकाल देते हैं और अकेला अपना चैतन्य स्वभाव बता रहे हैं, अपना अकेला नायक भाव बता रहे हैं। ऐसा आत्म स्वभाव बताने के लिए यहां उसकी नास्ति क्या है, वो आत्म स्वभाव में परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, ऐसे पर भावों से भिन्न प्रकट करता है, वह आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है। आत्म स्वभाव कैसा है कि परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और उसके निमित्त से होने वाले अपने विभाव उससे पृथक है, इसलिए अपना आत्म स्वभाव है वो अपने से ही संपूर्ण है, अपने से ही परिपूर्ण है, क्योंकि विभाव की सत्ता, परद्रव्य की सत्ता आत्म स्वभाव में कभी होती ही नहीं। वर्तमान पर्याय की अशुद्ध रूप सत्ता हो या वर्तमान पर्याय में अशुद्धता का व्यय होके शुद्ध पर्याय की सत्ता हो, वो कोई भी सत्ता अपने त्रिकाल नायक भाव में नहीं है, मगर यहां अभी विभाव की चर्चा चल रही है। विभाव स्वभाव अपने में नहीं है, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपना पर्याय में होने वाला विभाव भी अपने में नहीं है, ऐसा अपना आत्म स्वभाव है जो संपूर्ण है और मेरे से ही पूर्ण है। कोई पर्याय की, विभाव की कोई पर्याय की, स्वभाव की भी अपेक्षा नायक भाव को कभी लगती ही नहीं है, ऐसा मेरा नायक स्वभाव, आत्म स्वभाव संपूर्ण और अपने से ही पूर्ण है, ऐसा यहाँ ये कलश में बता रहे हैं। ये कलश में ये विकल्प और संकल्प विकल्प की झाल भी बहुत अच्छी बात यहाँ कलश में आचार्य भगवान बताने वाले हैं। आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है, वो आत्म स्वभाव कैसा है, तो कि समस्त लोकालोक का ज्ञाता है, समस्त लोकालोक का ज्ञाता है माने समस्त लोकालोक को जानने की शक्ति आत्म स्वभाव में है, ऐसा समस्त लोकालोक का ज्ञाता है, ऐसा प्रकट करता है आत्म स्वभाव को, कैसा प्रकट करता है, पर द्रव्य और पर भावों से भिन्न अपना आत्म स्वभाव संपूर्ण और परिपूर्ण है, ऐसा आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ शुद्ध नहीं उदित तो होता है। वो आत्म स्वभाव कैसा है कि जो ऐसा आत्म स्वभाव समस्त लोकालोक का ज्ञाता है और संपूर्ण है, और क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है, शुद्ध नहीं में कर्म गौण है, और वह आदि अंत विमुक्तम आत्म स्वभाव को आदि अंत से रहित प्रकट करता है, अर्थात किसी आदि से लेकर जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया और कभी भी किसी से जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे पारिणामिक भाव को प्रकट करता है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है, शुद्ध नहीं में कर्म गौण है, माने कि ज्ञान में भी जो भेद पड़ता है वो विकल्प है, और जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म में अपनी जो कल्पना चलती है उसको बोला जाता है संकल्प, वो संकल्प है, और ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान में भेद पड़ते हैं उसको बोला जाता है विकल्प, मगर वो संकल्प विकल्प से पार विलीन संकल्प विकल्प जाल वाला जो अपना ज्ञायक स्वभाव है, वो ज्ञायक स्वभाव कैसा है कि वो आदि अंत से रहित है, माने कि उसकी कोई आदि भी नहीं है और उसका कभी अंत होने वाला नहीं है, इसलिए वो अनादि अनंत है। अनादि अनंत सत्ता मेरे आत्म स्वभाव की है, वो संपूर्ण सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है, अनादि से मेरा स्वभाव शुद्ध 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 ऐसा ही रहा है। पर्याय में कितनी भी अशुद्धता चलती रहे, पर्याय में कितना भी प्रकरण चलता रहे, पर्याय में कितनी भी अशुद्धता का विभाव प्रकट होता रहे, फिर भी मेरा शुद्ध स्वभाव को कुछ आंच आती नहीं, ऐसा अनादि से मेरा स्वभाव शुद्ध 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 ही बच गया है। एक समय की पर्याय में अशुद्धता का जन्म होता है, एक समय की पर्याय में, समयवर्ती पर्याय में, आगे पीछे कुछ नहीं है अशुद्धता, आगे पीछे कुछ नहीं है, सब पारिणामिक भाव है। ऐसा पारिणामिक भाव को यहां दिखा रहे हैं। पारिणामिक भाव कैसा है? पारिणामिक भाव का वाच्य क्या होता है? पारिणामिक भाव माने निरपेक्ष भाव, पारिणामिक भाव माने स्वयं भाव, पारिणामिक भाव माने कोई की अपेक्षा नहीं रखने वाला भाव, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। वो पारिणामिक भाव रूप अपना आत्म स्वभाव कैसा है कि अनादि अनंत है, एक रूप है, उसमें दो रूप होता ही नहीं, कभी द्विरूपता होती ही नहीं, अनादि अनंत पड़ा ही होता है, उसमें उत्पाद्य ही नहीं है, उसमें ध्रुव सत्ता में उत्पाद्य ही नहीं होता, इसलिए वो सदा ऐसा रहता है। देखो अशुद्ध पर्याय नहीं है, शुद्ध पर्याय नहीं है, वो तो विशेष पर्यायों की चर्चा है, वो तो नई नई प्रकट होने वाली चर्चा है, वो तो कर्म का निमित्तपना कर्म का अभाव वाली चर्चा है, अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय वाली। उत्पाद यही तो पर्याय का स्वभाव है, उत्पाद यही क्या है? पर्याय का स्वभाव है, वो पर्याय में शुद्धता की अशुद्धता वो उत्पाद में चलती रहती है, वो शुद्धता और अशुद्धता तो कर्म के संयोग से, कर्म के अभाव से, कर्म के अनुदय से चलती रहती है, वो शुद्धता और अशुद्धता कर्म के साथ अभेद होती है। उत्पाद्य स्वभाव तो पर्याय का है, वो तो पर्याय का स्वभाव है, वो पर्याय का स्वभाव शुद्ध है कि अशुद्ध है ऐसा नहीं है, पर्याय का स्वभाव उत्पाद्य है, वो उत्पाद्य में या तो शुद्धता चलती है या तो अशुद्धता चलती है, वो शुद्धता की अशुद्धता में कर्म की सापेक्षता लागू पड़ती है, उत्पाद्य स्वभाव में कोई सापेक्षता नहीं है, वो तो पर्याय का स्वभाव है, वो अनादि अनंत है। द्रव्य का स्वभाव पारिणामिक भाव अनादि अनंत है, वो यहां बता रहे हैं, और शुद्धता अशुद्धता कर्म के निमित्त से होती है, वो उसको गौण करके कर्म के खाते में डालते हैं, और वो द्रव्य स्वभाव है, वो द्रव्य स्वभाव पारिणामिक भाव रूप है, उसको कौन प्रकट करता है? तो कि शुद्ध नहीं उसको बताता है, तो कि शुद्ध नहीं क्या होती है? तो कि वो पर्याय का उत्पाद है, वो शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, वो भी निरपेक्ष है, जैसे पर्याय का उत्पाद निरपेक्ष है, वैसे शुद्ध नहीं निरपेक्ष होती है, शुद्ध नहीं में शुद्धता प्रकट होती है वो कर्म सापेक्ष है, शुद्ध नहीं निरपेक्ष है वो सापेक्ष नहीं होती, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। ये मर्म वाला कलश है, देखो एक अपना त्रिकाल स्वभाव है वो परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला नायक भाव है, एक अपना पर्याय स्वभाव है वो उत्पादी स्वभाव है उसका, मगर वो उत्पाद ध्रुव स्वभाव में नहीं है, मगर वो पर्याय का स्वभाव है उत्पाद, तो पर्याय का स्वभाव उत्पाद है, वो उत्पाद स्वभाव में कोई समय शुद्धता भी होती है कोई समय अशुद्धता भी होती है, तो वो शुद्धता और अशुद्धता है वो पर्याय का स्वभाव नहीं है, स्वभाव कभी फिरता नहीं, अभी कोई बार अशुद्धता है तो पर्याय का स्वभाव तो अशुद्ध हो गया, अशुद्धता जाके शुद्धता प्रकट हुई तो पर्याय का स्वभाव तो शुद्ध हो गया, तो के स्वभाव में फर्क नहीं आता, स्वभाव चेंजेबल नहीं होता, स्वभाव ऐसा ऐसा होता है, इसलिए पर्याय का स्वभाव उत्पाद भी है वो भी पर्याय का स्वभाव है, शुद्धता अशुद्धता पर्याय का स्वभाव नहीं है, शुद्धता अशुद्धता तो कर्म सापेक्ष है उसमें निकाल दिया इसने उसको, वो तो कर्म का निमित्त बना है, वो कर्म की सत्ता ही है शुद्धता अशुद्धता, वो अपनी सत्ता ही नहीं है, मेरी सत्ता ही नहीं है, तो मेरी सत्ता कौन सी है, तो कि मेरी सत्ता में दो भाव है, एक द्रव्य भाव है एक पर्याय भाव है, तो कि द्रव्य सत्ता कैसी है, द्रव्य सत्ता क्या है, द्रव्य सत्ता कैसी है, द्रव्य सत्ता कैसे संपूर्ण है, द्रव्य सत्ता कैसे परिपूर्ण है, द्रव्य सत्ता कैसे एक रूप होती है, कैसे अभेद होती है, कैसे नित्य होती है, कैसे शुद्ध होती है, तो कि वो परम निरपेक्ष है, वो पारिणामिक भाव को परम निरपेक्ष बोला जाता है, किसी की अपेक्षा जिसको न लगे उसको पारिणामिक भाव लक्षण कहा जाता है, वो पारिणामिक भाव लक्षण है वो त्रिकाली द्रव्य का लक्षण है, पर्याय का लक्षण कौन सा, तो कि पर्याय का लक्षण चार भाव नहीं है, चार भाव तो पर्याय की उपाधि है, वो लक्षण नहीं है पर्याय का, अभी तुम्हें ऐसा लगता है कि औदयिक औपशमिक संयोगशमिक सहायिक है वो चार भाव है वो तो पर्याय का लक्षण है, और परम पारिणामिक भाव है वो द्रव्य का लक्षण है, तो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, चार भाव तो पर्याय का लक्षण बोलोगे तो जो भाव अभी चलता है वही भाव चलता रहेगा पर्याय में, वो लक्षण नहीं कहा जाता, पर्याय का लक्षण पर्याय का स्वभाव किसे बोला जाता है कि जो वो भी अनादि अनंत होता है, द्रव्य का स्वभाव द्रव्य का लक्षण किसे कहा जाता है वो भी अनादि अनंत होता है, ये स्वभाव की बात है, द्रव्य का स्वभाव पर्याय का स्वभाव, द्रव्य को द्रव्य के स्वभाव से देखो पर्याय को पर्याय के स्वभाव से देखकर उसकी दृष्टि छोड़ो, मगर है पर्याय का स्वभाव के साथ उत्पाद भी स्वभाव है, उत्पाद व्यय में शुद्धता के अशुद्धता है वो उत्पाद व्यय की विशेषता है, वो कायम नहीं रहती, कायम शुद्धता नहीं रहती कायम अशुद्धता भी नहीं रहती, इसलिए वो पर्याय का स्वभाव नहीं है, कायम उत्पाद नहीं रहता है इसलिए वो पर्याय का स्वभाव है, पर्याय को भी इस तरीके से समझो, द्रव्य को पारिणामिक परम पारिणामिक भाव लक्षण से समझो और पर्याय को उत्पाद के लक्षण से समझो, कोई भाव की उपाधि पर्याय में मत लगाओ कि भाई औदयिक भाव है वो दूर, वो माने कि औदयिक भाव गया तो औपशमिक हुआ, औपशमिक के बाद में क्षयोपशमिक सायोपशमिक हुआ, सायोपशमिक के बाद में वृद्धिगत होकर क्षयिक हुआ, तो कि वो पर्याय का लक्षण हो पर्याय का भाव हो तो वो तो एक रूप रहना चाहिए, फिरता है इसलिए वो पर्याय का स्वभाव भी नहीं है, लक्षण किसको बोलते हैं, सदा वो इसके साथ में रहे उसको लक्षण बोला जाता है, इसलिए कि द्रव्य का लक्षण परम परिणामिक भाव, पर्याय का लक्षण और स्वभाव उत्पाद यही है, बाकी की सब चर्चा है पर्याय की है सब उपाधि में चली जाती है,
इसलिए शक्ति
उत्पाद में ध्रुव, हाँ वो है ना उत्पाद में ध्रुव, तो शक्ति अठारह की शक्ति है, वो ऐसा है कि कोई भी चीज हो, कोई भी पदार्थ ले लो, उसकी स्वभाव से पहचान करो। द्रव्य को भी द्रव्य के स्वभाव से देखो, पर्याय को भी पर्याय के स्वभाव से देखो। पर्याय को पर्याय से के स्वभाव से देखने से द्रव्य दृष्टि नहीं होती, मगर पर्याय को पर्याय के स्वभाव से जो देखता है उसकी पर्याय पर दृष्टि नहीं रहती। ऐसा है स्वरूप। तो यहां क्या बताना चाहते हैं कि जो आत्म स्वभाव को आदि अंत से रहित प्रकट करता है, किसी आदि से लेकर जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया और कभी भी किसी से जिसका विनाश नहीं होता, ऐसा पारिणामिक भाव को प्रकट करता है और वह आत्म स्वभाव को एक सर्व भेद भाव से, द्वैत भाव से रहित एकाकार प्रकट करता है। क्या शुद्ध नहीं की व्याख्या बताइए। हाँ, आत्म स्वभाव कैसा है और आत्म स्वभाव ऐसा है उसको शुद्ध नहीं प्रकट कर देता है। वो शुद्ध नहीं क्या है कि वो शुद्ध नहीं किसे बोलते हैं कि जो उत्पाद सीधा में नायक हुए ऐसा परिणमता है, जो उत्पाद में सीधा नायक हुए ऐसा परिणमता है, उसका नाम शुद्ध नहीं है। वो शुद्ध नहीं शुद्धात्मा को ही बताती रहती है, उसको शुद्ध नहीं कहा जाता है, ऐसा यहां बता रहे हैं। अभी कहते हैं देखो ये पूरी चौथी गाथा में ये बात चलेगी, द्रव्य का स्वभाव और द्रव्य का लक्षण क्या, पर्याय का स्वभाव और पर्याय का लक्षण क्या, सब उपाधि को छोड़ देना, औदयिक औपसमिक सायोपसमिक सायिक कर्म सापेक्ष भाव है, सब सायिक भाव कर्म सापेक्ष। द्रव्य का तो स्वभाव नहीं है वो सायिक भाव, पर्याय का भी स्वभाव नहीं है वो पर्याय का विभाव है। साई भाव पर्याय का विभाव माने कि पर्याय का विशेष भाव है, पर्याय का स्वभाव नहीं है, पर्याय का स्वभाव उत्पाद नहीं है। ये व्याख्या बराबर याद रखना, सब कलश सब गाथाओं में ये व्याख्या आप लगा दो, आपकी पर्याय दृष्टि ही नहीं रहेगी, पर्याय दृष्टि छोड़नी नहीं पड़ेगी। देखो पर्याय की यथार्थ समझ भी उसके लक्षण से और उससे हो जाती है ना, उसको पर्याय दृष्टि छोड़नी नहीं पड़ती, उसको पर्याय दृष्टि होती नहीं, पर्याय दृष्टि होती नहीं उसको। जिसको पर्याय का यथार्थ ज्ञान हो जाता है वो ज्ञान अपने ज्ञायक की माने की दृष्टि करा देता है। ज्ञान है ना, ज्ञान ज्ञान के पास दो भाव चलते रहते हैं, श्रद्धा का एक प्रतीत भाव है ना, वो तो श्रद्धा का सम्यक दर्शन प्रकट होवे उसको प्रतीति बोला जाता है, मगर ज्ञान में सम्यक दर्शन से पहले एक ज्ञान में ऐसी एक प्रतीत बन जाती है, उसको ज्ञानात्मक प्रतीत बोलते हैं, ज्ञान की प्रतीत बोली जाती है। वो ज्ञान ऐसी प्रतीत करता है, ऐसी प्रतीत करता है, ऐसी प्रतीत करता है कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा ज्ञायक भाव ऐसा है, मेरी परिपूर्णता ऐसी है, मेरा चैतन्य परिपूर्णता ऐसी है, मेरा चैतन्य स्वभाव ऐसा है, मेरा ज्ञान दर्शन उपयोग मैत्री काल ऐसा स्वभाव है, ऐसा ज्ञान में एक प्रतीति बन जाती है। वो ज्ञान में प्रतीति कब बनती है कि जब ज्ञान में ज्ञान का भी स्वभाव उसको ख्याल में आने लगता है, सर्व विभावों को छोड़ के, चारों भाव के विभाव को छोड़ के, विशेष भाव को छोड़ के उसको अपना स्वभाव जब ख्याल में आता है, उत्पाद में लक्षण भी ख्याल में आता है, तो वो उत्पाद में फिर खड़ा नहीं रहता, वो ध्रुव में ही चला जाता है सीधा। इसी तरीके से ये त्रिकाल द्रव्य स्वभाव परम परिणामी भाव लक्षण, पर्याय का लक्षण उत्पाद व्यय और पर्याय का विशेष भाव औदयिक औपसमिक सयोपसमिक सायिक और वो चारों भाव में निमित्तपना कर्म का, इस तरीके से ये पूरा आत्मा को समझना है चौधरी गाथा में। ये चौधरी गाथा का उद्घाट दसवां कलश है, उसमें ये सब बात आचार्य भगवान फरमा रहे हैं। अब कहते और विलीन संकल्प विकल्प जालम, विलीन संकल्प विकल्प जाल, संकल्प किसे कहते हैं और विकल्प कैसे कहते हैं, संकल्प और विकल्प की व्याख्या इसमें लिखी है, मैं पढ़ लेता हूं। संकल्प जिसमें समस्त संकल्प विकल्प के समूह विलीन हो गए हैं, ऐसा शुद्ध नहीं अपने आत्मा को प्रकट करता है। संकल्प माने द्रव्य कर्म भाव कर्म नव कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना, सो संकल्प है। देखो क्या लिखा है, द्रव्य कर्म
और भाव कर्मा और नव कर्मा आदि पुद्गल द्रव्य लिखा है। भाव कर्म को पुद्गल द्रव्य में डाला है। हालांकि भाव कर्म तो अपनी पर्याय है, तो कि अपनी पर्याय है उसको यहां पुद्गल द्रव्य में डाल दिया। नव कर्म और द्रव्य कर्म तो समझ में आवे, मगर यहां भाव कर्म को पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना, भाव कर्म में अपनी कल्पना करना, वो पुद्गल में अपनी कल्पना हो जाती है। क्योंकि भाव कर्म प्रकट कैसे होता है ऊपर बता दिया कि कर्म के निमित्त से यहां नैमित्त भाव भाव कर्म प्रकट होता है, इसलिए वो भाव कर्म को भी कर्म के खाते में पुद्गल के खाते में डाल देते हैं। इसलिए कैसा भी उत्कृष्ट उत्कृष्ट शुभ भाव चलता हो, वो क्या है इस कहां क्या लिखा है इसमें, पुद्गल की सत्ता लिखी है, पुद्गल की सत्ता है, जीव की सत्ता नहीं है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नव कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना, अपनी कल्पना उसमें करना, उसको बोला जाता है संकल्प, कि मैं द्रव्य कर्म रूप हो गया, मैं भाव कर्म रूप हो गया, मैं नव कर्म रूप हो गया, यानी कि मैं जड़ रूप हो गया, यानी कि मैं पुद्गल रूप हो गया, ऐसी कल्पना करना उसका नाम संकल्प बोला जाता है। वो संकल्प है ने यहां श्रद्धा का दोष बता रहे, यहां मिथ्यात्व का दोष बता रहे, कि अपने स्वभाव की कल्पना पुद्गल द्रव्य में करना कि मैं भाव कर्म रूप हूं, मेरी पर्याय में भाव कर्म हो रहे हैं, वो पर्याय मेरी है, यहां कह रहे हैं कि वो पुद्गल की सत्ता है, तेरी पर्याय में नहीं हो रहे है। तेरी पर्याय में होने पर भी वो पुद्गल की सत्ता है, ऐसा कह रहे हैं यहां पे। इसका नाम संकल्प मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व बता रहे हैं, श्रद्धा का दोष बता रहे हैं। जीव को अनादि से तो वही चल रहा है ना, अज्ञान दशा में क्या चल रहा है, पुद्गल के साथ ही उसका संपर्क चालू रहता है 24 घंटा। आत्म स्वभाव की जब बात चले तब तो आत्म स्वभाव की महिमा आवे, तब तो ऐसा ही लगे कि अभी अनुभूति हो जाएगी, ऐसी परिपूर्ण परमात्मा की चर्चा चले, मैं नायक भाव हूं, भूता स्वभावी हूं, एक रूप हूं, अखंड हूं, नित्य हूं, निर्लेप हूं, मेरे में पर्याय मात्र का सर्वथा अभाव है, पर्याय मात्र का। वो अपनी उत्पादी की बात कहां से निकली, कि मैंने बोला कि उत्पादी का अभाव है द्रव्य में, इसलिए वो उत्पादी का लक्षण की बात चलने लगी। वो शुद्ध वशुद्ध पर्यायों को तो छोड़ो, मगर जो उत्पादी है वो भी मेरा द्रव्य स्वभाव में पर्याय का सर्वथा अभाव है, ऐसा 18वीं गाथा में लिखा है, आप देख लेना। उसको संयोग कहा है उत्पादी को, इसलिए वो संयोग होता है, वो स्वभाव में नहीं होता, एक स्वभाव है एक संयोग है, संयोग को पर्याय कहा है, संयोग को उत्पाद्य कहा है। तो यहां कहते हैं कि उसमें भाव कर्म द्रव्य कर्म नव कर्म में अपनी कल्पना करना उसका नाम संकल्प विख्यात्व, ये श्रद्धा का दोष बता रहा है। फिर क्या कहते हैं कि ज्ञेयो के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना सो विकल्प है। विकल्प किसे कहते हैं कि अनंतानुबंधी का विकल्प बता रहे हैं यहां। श्रद्धा की पर्याय में मिथ्यात्व की चर्चा है संकल्प में, और ये विकल्प में अनंतानुबंधी का विकल्प माने की रागादि भाव उसकी ज्ञेय की सन्मुक्ता करके ज्ञान अपने ज्ञान को एकाकार होने पर भी अनेकाकार मानने लगता है, तब वहां विकल्प खड़ा होता है। विकल्प दो प्रकार के होते हैं, एक रागात्मक विकल्प होता है, एक ज्ञानात्मक विकल्प होता है। माने कि राग की सत्ता को ही जो ज्ञान देखता रहता है, तो वो राग की सत्ता को ज्ञान में देखना, तो ज्ञान में अनेकाकारपना आया, वो अनेकाकार ज्ञान को अपना मानना, अपना जानना, उसको ज्ञानात्मक विकल्प कहने में आता है। ज्ञेयो के भेद से ज्ञान में भेद मालूम होना, तो ज्ञान में जब भेद पड़ा, सुदने का उदय आत्म स्वभाव को बताने के लिए हुआ था, मगर ज्ञान में भेद कर दिया उसने, अभी ज्ञान में भेद कर दिया तो क्या हुआ कि भेद रूप ज्ञान में अनुभूति नहीं होती, तो भेद रूप ज्ञान हुआ तो ज्ञान में माने कि ज्ञेय के निमित्त से भेद हुआ, ज्ञायक से च्युत हुआ ज्ञान,
तो वहां विकल्प की चारित्र की पर्याय में रागादि भाव की उत्पत्ति हो गई, और रागादि भाव को देखता रहा तो ज्ञान में ज्ञानात्मक विकल्प खड़ा हो गया। तो यहां कहते हैं कि ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना सो विकल्प है। संकल्प और विकल्प, संकल्प माने मिथ्यात्व, विकल्प माने रागादि भाव, और संकल्प विकल्प से माने कि दूर अपना आत्म स्वभाव, वो आत्म स्वभाव को शुद्ध नहीं ऐसा ही उदित होता है कि आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ ही उदित होता है, उसको शुद्ध नहीं कहा जाता है। ऐसा यहां ये 10 नंबर का कलश में आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम पर द्रव्य और पर द्रव्य के माने की उदय उससे निमित्त से यहां होने वाली विभाव पर्याय वो सबसे प्रथम अपना आत्म स्वभाव है, वो आत्म स्वभाव को शुद्ध नहीं बता रहा है। शुद्ध नहीं और शुद्धात्मा को अभेद करते हैं, और पर्याय का विशेष और कर्म को अभेद करते हैं, ऐसे दो विभाग यहां करके बता रहे हैं कि ऐसा शुद्ध नहीं है, वो शुद्धात्मा को बताता है तो उसकी अभेद सत्ता बता रहे हैं, वो परिणामी द्रव्य की सत्ता है। वो अपरिणामी का लक्ष्य से जो परिणामन पर्याय में होता है उसको परिणामी बोला जाता है, वो नित्य परिणामी में नित्य अपरिणामी बसता है, परिणाम में अपरिणामी नहीं होता कभी, समझना। कभी परिणाम के भेद में अपरिणामी नहीं होता। जब परिणाम अपने आत्म स्वभाव की सम्मुख होके परिणामी बनता है तब वो परिणामी में अपरिणामी बसता है। परिणाम का भेद तो पर द्रव्य है, साई भाव को पर द्रव्य बोल दिया 50वीं गाथा में नियम साहब ने, सातों तत्वों का समूह पर द्रव्य 38वीं गाथा में बोल दिया। तो वो पर्याय का भेद करो, अनित्य में नित्य है तो क्या, अनित्य में नित्य है वो कहने का आशय ये है कि वो अनित्य पर्याय नित्य रूप हो गई है, अभी वो परिणमन रूप परिणामी बन गई है, वो द्रव्य की सन्मुख होके ऐसी परिणामी आत्मा में अपरिणामी बसता है। परिणमन के बिना अपरिणामी उस पर कैसे आएगा है? कोई कहे कि परिणाम में आत्मा है, परिणाम में आत्मा है, परिणाम में आत्मा नहीं होता, परिणाम का तूने भेद कर दिया तो भेद में आत्मा नहीं होता, वो परिणाम द्रव्य सन्मुख परिणमता है, शुद्ध नहीं आत्म स्वभाव को जब प्रकट करती है वो परिणामी बन गई, वो शुद्ध नहीं, वो परिणामी बनी तब उसमें अपरिणामी होता है। ऐसे नित्य परिणामी में नित्य अपरिणामी बसता है, परिणाम में अपरिणामी नहीं बसता। जैसे तूने नित्य परिणामी में से नित्य परिणामी में से अनित्य को भेद करके निकाला पर्याय को, तो वो अनित्य पर्याय तो पर द्रव्य है, वो तो पर भाव है, पर स्वभाव है, उसमें आत्मा नहीं बसता। वो पर्याय जब शुद्ध नहीं बन के आत्म स्वभाव को प्रकट करे कि मैं ही त्रिकाली द्रव्य हूं, मैं ही शुद्ध शाश्वत हूं, मैं ही एक रूप हूं, मैं ही अनादि अनंत हूं, मैं ही परिपूर्ण हूं, मैं ही ध्रुव हूं, ऐसी जब प्रगटता शुद्ध नहीं से शुद्धात्मा की होवे तब वहां शुद्ध नहीं और शुद्ध नहीं का विषय का भेद ही नहीं रहता। वो भेद नहीं रहता उसका मतलब है कि वो परिणामी में अपरिणामी बसता है, वो परिणामी दृष्टि का विषय नहीं है, दृष्टि का विषय अपरिणामी है मगर बसता है परिणामी में अपरिणामी, क्योंकि जब परिणमन होता है ना तब ही अपरिणामी का ज्ञान श्रद्धान होता है। इसीलिए परिणामी में अपरिणामी है, परिणाम में अपरिणामी नहीं होता कभी। परिणाम में अपरिणामी होवे तो भेद में अभेद आ गया, भेद में अभेद नहीं होता, अभेद में ही अभेद होता है। तो वो अभेद कौन सा, परिणामी अभेद कौन सा, कि वो द्रव्य भी निर्मल, गुण भी निर्मल, पर्याय भी निर्मल, वो निर्मल परिणामी में निर्मल अपरिणामी त्रिकाल ध्रुव कुटस्थ बस रहा है, उसको बोला जाता है शुद्ध नहीं में शुद्ध आत्म स्वभाव, उसको उसने प्रकट कर दिया, उसकी पहचान कर ली, उसको अभेद रूप से ग्रहण कर लिया, ज्ञान में नायक की सत्ता का स्वीकार कर लिया, ऐसा उसमें कहा जाता है। ऐसा कहते हैं तब भी पर्याय और द्रव्य कभी एक नहीं होता, पर्याय का उत्पाद भी निर्विकल्प दशा में भी चालू रहता है। बिल्कुल पर्याय और द्रव्य कभी एक सत्ता नहीं हो सकती, दोनों की सत्ता पृथक पृथक है, एक ध्रुव सत्ता है एक उत्पाद व्यय सत्ता है, दोनों सत्ता का भेद विकल्प छूट जाता है कि ये पर्याय है शुद्ध नहीं है, वो द्रव्य का अनुभव करती है, पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है, पर्याय द्रव्य की सम्मुख हुई है, ये सब भेद दोनों का करके विकल्प खड़ा होता है। मेरी पर्याय ने आत्मा की अनुभूति की, भेद विकल्प है। मेरी पर्याय में शुद्धात्मा बसता है, भेद विकल्प है। मैं शुद्धात्मा हूं अनुभूति के पहले वो भी विकल्प है। ऐसा परिणमन होके अपरिणामी जब उसमें बसे तब वहां द्रव्य पर्याय का भेद विकल्प छूट जाता है। कौन द्रव्य कौन गुण और कौन पर्याय, मेरे में तो आनंद पूर्ति रूप आनंद ही बह रहा है, मुझे द्रव्य गुण पर्याय कुछ विकल्प भाषित ही नहीं होते। अभेद में भेद भाषित नहीं होना उसका नाम अभेद कहा जाता है। चाहे वो अपरिणामी अभेद कहो तो दृष्टि का विषय, चाहे परिणामी अभेद कहो तो ज्ञान का विषय। वो ज्ञान का विषय उस पर दृष्टि जाए तो वो दृष्टि मिथ्या को है। ऐसा यहां ये कलश में बता रहे हैं कि शुद्ध नहीं आत्मा को उदित करता हुआ प्रकट होता है, और पर द्रव्य और पर भाव और संकल्प और विकल्प की झाल से प्रथम शुद्ध नहीं अपना शुद्ध आत्मा को प्रकट करता हुआ उदित होता है। ऐसा शुद्ध नहीं और ऐसा शुद्ध आत्मा कैसा है उसकी चर्चा भी इसमें 14वीं गाथा में बहुत अच्छी तरह से आचार्य भगवान बताने वाले हैं। अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, ऐसा पांच भाव स्वरूप एक शुद्ध आत्मा है। वो पांच अवध, अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसा आत्मा नहीं है, पांच भाव रूप एक आत्मा है। अवध स्पष्ट से देखेगा तो अनन्य रह जाएगा, अनन्य से देखेगा तो नियत रह जाएगा, नियत से देखेगा तो अविशेष रह जाएगा, अविशेष से देखेगा तो असंयुक्त रह जाएगा। तो पांच विशेषण करके बताया है, द्रव्य का पांच विशेषण है, वो विशेषण आत्मा नहीं है, विशेषण में भी आत्मा नहीं है, विशेषण भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, नायक आत्मा परिपूर्ण चैतन्य तत्व, उसको कोई उपाधि लागू नहीं पड़ती विशेषण की भी, क्योंकि कोई भी विशेषण लगाओ तो दूसरा विशेषण रह जाएगा, तो वो ज्ञायक नहीं है। वो ज्ञायक तो ज्ञायक है, अपरिणामी तो अपरिणामी है, नीच चैतन्य तत्व तो चैतन्य तत्व है। ऐसी मेरी सत्ता है, ऐसा मेरा परिपूर्ण तत्व है, ऐसा मेरा तत्व में कोई बद स्पष्ट आदि भाव है ही नहीं। जितने भी बद स्पष्ट आदि भाव है वो उसमें बिल्कुल नहीं है। तो श्रोता प्रश्न करेगा कि ये हमें तो यही दिख रहा है, बहुत स्पष्ट आदि भाव आप बोल रहे हो कुछ नहीं है और हमें तो यही दिख रहा है, हमें तो अवध स्पष्ट भाव ही नहीं दिखता, और आप ऐसे ही कह रहे हो कि आप अवध स्पष्ट हो, अनन्य हो, नियत हो, अविशेष हो, असंयुक्त हो, तो कि तू है तो ऐसा ही, तुझे न दिखे इसलिए किसी को नहीं दिखता, ऐसा नहीं दिखता, ऐसा नहीं है। तुझे नहीं दिखता, अनंत ज्ञानियों ने देख लिया है, तुझे भी अभी दिख जाएगा। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण गाथा 14वीं गाथा सम्यक दर्शन की है और 15वीं गाथा सम्यक ज्ञान की है। सम्यक दर्शन के साथ में ही सम्यक ज्ञान होता है, मगर गाथाएं क्रम से ही लिखी जाती है, इसलिए यहाँ 14वीं और 15वीं गाथा अपनी चलेगी। 15वीं गाथा का तो थोड़ा ही प्रकरण लेना है, बोल तो अपनी 14वीं गाथा है, उसको लेके ऐसा स्वरूप समझ कर सर्वभवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल पावे। Thank you.